वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरयेत् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 14 श्लोक नंबर 38। एवं मृषंता ऋषयो धावता सर्वतो दिशं पांशुः समुत्थितो भूरिश्च रणं भी लुम्पता। एवं मृषंत ऋषयो धावतं सर्वतो दिशं पांशुः समुत्थितो भूरि शरणं भिलुम्पता। एवं मृषंत ऋषयो धावतं सर्वतो दिशं पांशुः समुत्थितो भूरि चरणं अभिलुम्पता। एवं मृषंत ऋषयो धावतं सर्वतो दिशं पुंसः समुत्थितो भूरि चरणं अभिलुम्पता। इस प्रकार मृषंतः विचार करते हुए ऋषया बड़े बड़े साधु पुरुष धावता दौड़ते हुए सर्वत दिशं सभी दिशाओं से पांशुः धूल समुत्थिता उठी हुई भूरिः अत्यधिक चुराणाम चोर उचकों में अभिलुम्पताम लूटपाट में व्यस्त। अनुवाद और तात्पर्य अभयचरण भक्ति प्रधान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। जब ऋषिगण इस प्रकार विचार विमर्श कर रहे थे तो उन्होंने चारों दिशाओं से धूल की आंधी उड़ती देखी। ये आंधी उन चोर उचंग के दौड़ा भागी से उत्पन्न हुई थी जो नागरिकों को लूट रहे थे। तात्पर्य, चोर उचके सदैव इस ताक में रहते हैं कि राजनीति का उथल पुथल हो और वे जनता को लूटने का अवसर पाए। अतः इन चोर उचकों को उनके धंधे में निष्क्रिय बनाए रखने के लिए सशक्त सरकार आवश्यक है। इसमें भावार्थ में दो लाइन है, इसलिए 48 श्लोक भी चर्चा की जाएगी। 39 श्लोक इस प्रकार है, 39 और 40 में पढ़ रहा हूं। तद्रुप द्रव आज्ञा लोकस्य वसुलुपता भर्ते परते तस्मिन् अन्यन्य च जिज्ञासता चोर प्राय जनपदम हीन सतम अराजकम लोकान बार जशक्ता अभी तदो उषदर्शिनः। उस अंधड़ को देखकर साधु पुरुष ने समझ लिया कि राजा बैन की मृत्यु के कारण अत्यधिक अव्यवस्था फैल गई है। बिना सरकार के राज्य कानून तथा व्यवस्था से भिन्न हो जाता है। फलतः उन घातक चोर उचकों के का प्राबल्य हो उठा जो प्रजा की संपत्ति को लूट रहे थे। यद्यपि ऋषिगण इस उपद्रव को अपनी शक्ति से रोक सकते थे, जिस प्रकार उन्होंने राजा का वध किया था, किंतु उन्होंने ऐसा करना अनुचित समझा। अतः उन्होंने उपद्रव को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। तात्पर्य, ऋषियों तथा मुनियों ने आपातकाल उपस्थित होने से राजा बैन का वध तो कर दिया, किंतु मृत्यु के पश्चात चोर उचक का जो बोलबाला हुआ उसको दबाने के लिए सरकार में सम्मिलित होना नहीं चाहिए। ब्राह्मण तथा साधु पुरुष का काम वध करना नहीं है। भले ही आपातकाल उपस्थिति होने पर वे ऐसा करने को बाध्य हो, वे चाहते तो अपने मंत्र के बल से सभी चोर उचकों का वध कर सकते थे, किंतु उनके मतानुसार यह क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य था। अतः अनचाही भी वध करने के इस कार्य में उन्होंने भाग नहीं लिया। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्रन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामेहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु सीत पद कमलम श्री गुरो वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सह गण रघुनाथानी तम तम सजीव साद्वैतम सवधुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदन सहगना ललिता श्री विशाखा नितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रातःकालीन भागवत कक्ष में आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी जो चर्चा चल रही है राजा बेन की कथा। पहले जानना चाहिए श्रीमद् भागवत में क्या कथा आती है। संसार में किसी को भी पूछा जाए तो वो कहेगा भागवत में ही भगवान और उनका भक्त का चरित्र वर्णन आती है। लेकिन ये दुष्ट लोग का कैसा चर्चा फिर हो रहा है भागवत में, यही कहने की बात है। बेन महाराज, हिरण्यकशिपु, कांस, रावण, ऐसे ऐसे दुष्ट लोग का कथा है भागवत में। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो दुष्ट है, उनके कर्म के अनुसार हो सकता है। इसी प्रकार कर्म फल उनको लगा हुआ जो कि कर्म करना पड़ेगा और पड़ रहा है, लेकिन भागवत में उनका नाम आ चुका है और वो पवित्र दिव्य आत्मा है जो कि उनका नाम भागवत में वर्णन आ रहा है। हर जगह पे आप देखेंगे कहा जाता है रामचरित मानस, भगवान का चरित्र आता है। लेकिन जहां पे दुष्ट लोग होते हैं उनका अगर पे चरित्र नहीं लिखा जाता है, उनका चरित्र वहां पे उनका कथा कहा जाएगा। इसलिए ये टॉपिक का नाम है राजा बेन की कथा, वहां पे बेन की चरित्र नहीं लिखा हो, बेन का कथा क्या काम किया, इतना दुष्ट था। लेकिन दुष्ट होने का नाते फिर भागवत में आया। जब तक दुष्ट में नहीं करेगा तो वो साधुत्व का प्रकाश नहीं पाएगा। कैसा? जब तक अंधेरा नहीं रहेगा तब तक आलोक का कोई महत्व नहीं है। है कुछ महत्व? जब तक अंधेरा है तब आलोक का कुछ महत्व है। रात नहीं तो दिन का भी कुछ महत्व नहीं है। अंधेरे का बिना सूर्य का कोई महत्व नहीं, दुख का बिना सुख का कोई महत्व नहीं, और दुष्टों का बिना साधु का कोई महत्व नहीं, और ठंडी का बिना गर्म का भी महत्व नहीं। इस प्रकार बेन महाराज किस वंश में आ रहा है? ध्रुव महाराज आ रहा है, का वंश में आ रहा है। कितना भाग्यशाली, भाग्यशाली है ना कि बेन महाराज उसी वंश में आ रहे हैं जो कि ध्रुव महाराज इतने बड़े शुद्ध भक्त, कृष्ण का निज जन कहने से भी अतुक्ति नहीं होगा, और उन्हीं का वंश में कौन आ रहा है? बेन महाराज। तब ये ध्रुव महाराज का महत्व को बढ़ा रहा है। इसलिए मैंने कहा ठंडे का बिना गर्म का कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार तब आज का जो श्लोक है, ये श्लोक ऑलरेडी ये महाराज काल संपूर्ण, ये जो राजा बेन की कथा संपूर्ण खत्म कर चुके हैं। काल का जो कथा हुई थी उसी में संपूर्ण महाराज बोल चुके हैं। फिर भी भागवत होता है तो यह हमारा नित्य सेवा है, इसलिए नित्य सेवा करने के लिए पढ़ना पड़ता है। नहीं तो ऑलरेडी महाराज संपूर्ण कह चुके हैं काल, इसमें कुछ कहने का नहीं, क्योंकि हमारा नित्य होता है, नित्यम भागवत सेवा, तब हमें इसको पढ़ना पड़ता है। और जो नया आते हैं उनको आज का क्लास में कोई आएगा उसको ज्यादा मालूम नहीं पड़ेगा क्या बेन कौन है, उनका माँ का नाम क्या था, उनका पिताजी का नाम क्या था। बेन जो कि ध्रुव महाराज का वंश में कैसे आए हैं वो सारा डिटेल से उनको नहीं मालूम पड़ेगा जो नया आते हैं, और जो रेगुलर आते हैं उनको सारा चीज मालूम पड़ जाता है, एक ही टॉपिक शुरू होता है तो मालूम पड़ जाता है ये टॉपिक में क्या आएगा। तो आज का जो श्लोक है बताते हैं, हर श्लोक पिछले श्लोक का साथ कनेक्शन होता है, इसलिए यहां पे अनुवाद में चलो प्रभुपाद मेंशन करते हैं, जब ऋषिगण इस प्रकार विचार विमर्श कर रहे थे तो उन्होंने चोरों और दिशाओं से चारों दिशाओं से धूल की आंधी उठती हुई देखी। इस प्रकार मतलब पिछले श्लोक का साथ कनेक्शन है, क्या चर्चा कर रहे थे और कहां पे, सरस्वती नदी का किनार में बैठ के जब अपना नित्य कर्म सुबह का प्रातः काल में नित्य कर्म खत्म करके बैठे किनार में बैठ के यही चर्चा चल रही थी, बेन की कथा। तो बेन तो मर चुका था, मरने का बाद सारा चोर वो लोग दौड़ते हुए और उनका पैर से क्या उठा, धूली मतलब आंधी उड़ती हुई वो चीज को देखे, कौन देखा, ऋषि और मुनि लोग, मुनि ऋषि लोग यही देखे। और ये चोर लोग का क्या करने का, क्योंकि जब राजा नहीं होता है तब प्रजा लोग का सारा धन संपत्ति को क्या करते हैं, लूटपाट करते हैं। ये राजनीतिक उथल पथल हो और जनता को लूटने का अवसर पाए, ये चोर लोग किस प्रकार राजनीतिक मतलब जो राजा मर जाए नहीं तो वो राजा अपना सिंहासन को छोड़ दें, उनका यही विचार होता है कैसा, जिस प्रकार एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, मंदिर में सब लोग आते हैं किसके लिए आते हैं, प्रभु को दर्शन करने के लिए। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति का मन में भगवान बैठ जाए और हर व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर दें, वो उद्देश्य नहीं। कुछ लोग होते हैं उनका मन दूसरा का जेब में रहे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसलिए हर दिन सुबह से शाम तक डिक्लेयर होता रहता है जेब कतरे से सावधान। और ये भी यही चाहते थे, क्या चाहते थे, राजा अपना सिंहासन छोड़ दे नहीं तो राजा मर जाए, तब चोर लोग अपना प्रभाव दिखाएंगे। और यही भी हुआ, बेन महाराज जाने के बाद यही भाव हुआ। तब इसके लिए सारा मुनि ऋषि लोग चिंतित हो गए, किसको राजा सिंहासन देना चाहिए और कैसा व्यक्ति होना चाहिए। ये जो भागवत है, ये भागवत ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा शास्त्र नहीं है, ये शास्त्र के अंदर आपको हर चीज मिलेगा। इसको बोलते हैं गृहस्थ जीवन का एक लाइफ का पैकेज है, गृहस्थ जीवन का एक लाइफ का मतलब जीवन कैसा कौन सा शैली में चलाना है, ये भागवत से सारा शिक्षा मिलता है, और कोई शास्त्र नहीं, मेन शास्त्र है भागवत से, हर चीज भागवत में वर्णन है, कोई ऐसा चीज नहीं है। व्यवसाय करना इससे शिक्षा मिलेगा, झूठ बोलना इसे भी शिक्षा मिलेगा, झूठ कहां नहीं बोलना वो भी शिक्षा मिलेगा, संतान उत्पत्ति कैसा करना वो भी विधि संस्कार वो भी दिया गया है, अब भगवान को कैसा प्राप्त करना वो भी दिया गया है, हर चीज श्रीमद् भागवत में। यह हमारा लाइफ का पैकेज है, इसको इसलिए हमको रेगुलर पढ़ के अपना जीवन में उतारना है। इस प्रकार कहा जाता है हर व्यक्ति भागवत सुनना चाहता है और हर जगह पे भागवत होता है, कितना दिन, 7 दिन क्यों होता है, कारण क्या है, हाँ जी, 7 दिन होता है, इसलिए सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, इसके लिए इसमें कितना कारण है, लेकिन आप लोग को ज्यादा से ज्यादा जानकारी है क्या है, परीक्षित महाराज को साप मिला था और 7 दिन तो था, ठीक है, 7 दिन का अंदर उसका मृत्यु होगा, ये साप मिला था परीक्षित महाराज को, ठीक है, लेकिन भगवान ने जो उन्होंने जो बनाया है ये सातवां दिन से आठवां दिन कुछ है, और हर व्यक्ति का मृत्यु सातवां दिन के अंदर होता है, आठवां दिन कुछ आता है, ये भी प्रमाण है। दूसरा है जब गोकर्ण कथा कही थी तब वो भी कथा कितना दिन के लिए था, और गोकर्ण किससे कथा करने के लिए पूछा था जानते हैं? हाँ जी, सूर्य देव से पूछा था, और सूर्य देव ने स्वयं बताया आपको सात दिन का भागवत कथा करोगे तुम्हारा भाई का उद्धार होगा। इसलिए भागवत कितना दिन होता है? सात दिन। लेकिन जब धुंधुकारी क्या इसको बोलते हैं बांस में बैठ के कथा सुन रहे थे, लेकिन कथा सुनना थोड़ा ध्यान पूर्वक सुन के और क्या करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, तब मनन करने वाला व्यक्ति का ही उद्धार हुआ। और इसीलिए भगवान ने विमान भेजा और धुंधुकारी उसी विमान में बैठ कर गए। जब गए सारा जितना और सब कथा सुन रहे थे सब पूछे गोकर्ण को कि वो भाई चला गया तब हम लोग का कैसा सदगति, नहीं प्रमाण दिए कथा सुन के कथा को जो मनन करता है उसी के लिए भगवान स्वयं अपना विमान भेज देते हैं। लेकिन इसलिए श्रील प्रभुपाद ये बनाया है ये संस्था, इस संस्था में हर दिन क्या होता है नित्यम भागवत सेवया, और सात दिन का बात नहीं होता है, नित्यम भागवत सेवया। चले धुंधुकारी का सात दिन का अंदर उद्धार हुआ, परीक्षित महाराज का सात दिन के अंदर मृत्यु हुआ उद्धार हो गए, बेन महाराज ध्रुव महाराज का वंश में आए उनका भी आगे पढ़ेंगे उनका भी उद्धार। लेकिन हमें नित्य भागवत सुन के और उसको मनन करके हम भी कहां चले जाएं भगवत धाम। श्रील प्रभुपाद की। तब कहने का ये है कुछ भागवत से हर व्यक्ति चाहता है साधु लोग से सुनना और साधु का आचरण का जीवन में उतारना, ये भागवत में कथन आता है। लेकिन फिर भी कुछ दुष्टों से कुछ शिक्षा मिलता है, इसलिए तो भागवत में दुष्ट लोग का भी वर्णन है, ऐसा नहीं कि दुष्ट लोग का वर्णन नहीं है, कुछ दुष्ट लोग का भी वर्णन है, उनसे भी कुछ शिक्षा मिलता है। इसलिए कल महाराज बोल रहे थे, बोलते हैं ये भागवत से ये जो श्लोक अभी चल रहा है इससे हमको क्या शिक्षा मिल रहा है, बेन ने जो किया उसका कभी नहीं करना, जो नहीं किया वो करना है, जो नहीं किया वो करना है, ये भक्त को शिक्षा। चले दुष्ट लोग से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलता है, इसलिए तो अवधूत कितना गुरु बनाया, दो डजन, मतलब 24 गुरु बनाया, हर गुरु से कुछ ना कुछ शिक्षा मिला जो कि अपना जीवन में उतार के और कृष्ण का चरण में मन लगा के कृष्ण का धाम को प्राप्त करने के लिए, और दुष्ट लोग से भी कुछ शिक्षा मिलता है और इसको भी अपना जीवन में उतारना चाहिए। इस प्रकार नॉर्मल एक एग्जाम्पल देते हैं, जो 24 गुरु था, 24 गुरु के अंदर एक 70 नंबर गुरु है अवधूत का, क्या नाम, पिंगला वेश्या, और वो शिक्षा अपना जीवन में अवधूत ने उतारा। पिंगला वेश्या प्राचीन विदेह नगर के नगर में रहती थी, और प्रति रात्र अपने घर के बाहर खड़े होकर आने जाने वाले पुरुषों को देखा करते थे। प्रत्येक पुरुष को देखकर वह यही विचार करते थे कि उस रात कौन उसका ग्राहक बनेगा। उसका मन ही मन सोचा करता था, क्या इस व्यक्ति के पास धन है, क्या यह व्यक्ति बहुत धनी लगता है, परंतु क्या वह मुझे धन देगा, ये पिंगला वेश्या ने सोचता रहता था गेट का बाहर खड़े होकर। एक समय पूरी रात बीत गई परंतु उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। निराश होकर और दुखी होकर वह विचार करने लगी, मैं अपना खर्चा कैसे वहन करूंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी युवावस्था बीत रही है, यदि मुझे बिना किसी ग्राहक के कुछ और दिन बिताने पड़े तो मेरा होगा। अचानक उसने पाया कि चिंता और निराश से भरा उसके मन में संतोष का बीज उग उठा। उसने अपने भीतर वैराग्य और स्वतंत्रता का तथा सुख का अनुभव किया। अत्यंत वह एक गीत गाने लगा। श्रीमद् भागवत में भी लिपिबद्ध है यह गीत। वेश्यावृत्ति संभोग इच्छा तथा भोग विलास जीवन की मूर्खता को उजागर करता है। इस गीत में उसने सांसारिक सुख के क्षण भंगुर स्वभाव का वर्णन किया। इस प्रकार अपने अंतकरण में वैराग्य का को जगा देखकर उसने इसे भगवान की कृपा रूप में स्वीकार किया और अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। पिंगला वेश्या जो था वो कितना दुष्ट था, तो उससे क्या शिक्षा मिलता है? प्रभु को आत्मसमर्पण कर देने का। इस प्रकार तो जगन्नाथ भक्त चरित्र में दो तीन इस प्रकार वेश्या थे जिसका घर में स्वयं भगवान आते थे भोजन के लिए। यह कि आप लोग जानते थे जो खिचड़ी बनाने वाले जगन्नाथ भक्त चरित्र में जो कर्मा बाई एक ही था खिचड़ी खिलाने वाले, नहीं, इसी प्रकार तीन चार लोग का हाथ से खिचड़ी जगन्नाथ खाते थे। जब जगन्नाथ भक्त चरित्र होगा तब उसमें आपको सुनने मिलेगा जगन्नाथ जी तीन चार लगभग वेश्या का हाथ से भोजन करते थे और उसी प्रकार भाव से वो खिलाते थे। आत्मसमर्पण, पहले आत्मसमर्पण और दूसरा है इससे जो कथा मिलता है साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए और साधु का स्वभाव का अंदर क्या क्या गुण होता है और दुष्ट का अंदर क्या क्या गुण होता है। ध्रुव महाराज का अंदर क्या गुण था और बैन महाराज का अंदर क्या गुण। हर व्यक्ति सोचता है पिता माता अच्छा है तो बच्चा अच्छा बनेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? कोई गारंटी है? नहीं है। और इसी कथा से हमको मिल रहा है और हम भी हर व्यक्ति को यही शिक्षा देना चाहिए। हर व्यक्ति को हम जब प्रचार में जाते हैं हर व्यक्ति को यही बताना है पिता माता अच्छा हो गया तो बच्चा अच्छा होंगे कि बच्चा अच्छा हो गया तो पिता माता अच्छा होगा, कोई गारंटी नहीं है। कितना प्रकार के आप देखेंगे, इधर आप देख रहे हैं अंग महाराज इतना सुशील भक्त, अंग का पत्नी सुनीता वो कितना सुशील था प्रभु का भक्ति में, बच्चा बेन। लेकिन दूसरा में हिरण्यकशिपु असुर था लेकिन पत्नी कयाधु सुशील और वो भी भक्त, लेकिन बच्चा जो आया भक्त, बाप असुर पुत्र भक्त और बाप असुर पुत्र असुर। ये बताते हैं, इसलिए कहा जाता है ये जो पीढ़ी है यह हमारा कनेक्शन है। गीता में आप पढ़े हैं यह हमारा कनेक्शन है। एक भक्त कितना पीढ़ी को उद्धार करता है? हर व्यक्ति को मालूम है 21 पीढ़ी उद्धार करता है, ठीक है ना? तो इसी प्रकार बैन महाराज ध्रुव महाराज के वंश में आए तब क्या उद्धार नहीं होंगे? थोड़ा सोचिए, आगे पढ़ेंगे ये सारा कैसा हुआ। तो बैन महाराज का कल तो महाराज बता रहे थे, महाराज जब दोनों जाम को काट के क्या किए, घिसाई किए, तब उसमें जांग से पृथ्वी महाराज नहीं निकले, उसका नाम है बाहुक। जो बच्चा निकला है उसका नाम है बाहुक। ये वो गीत भागवत में लिखा है, आगे दो तीन श्लोक छोड़कर आएगा। बाहुक निकला और वो इतना काला था, जैसा बोलते हैं कोआ जैसा, नाक बड़ा है, पैर छोटा है, इस प्रकार। और उसी लोग बोले तुम बैठ जाओ, क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर को चार भाग किया गया। ये है ब्राह्मण, मस्तिष्क को ब्राह्मण माना गया है, बाहु को क्षत्रिय, पेट का नीचे पेट को बताया गया वैश्य, और नीचे का और शूद्र बताया गया ना। तो इसी प्रकार ये जंग से जब निकला है वो पापी है, इसलिए पाप को पहले खत्म कर दिया, इसलिए पाप को उन्होंने बोल दिया। ऋषि लोग बोले बैठ जाइए, और जब तक पाप खत्म नहीं होगा तब तक वो भक्ति नहीं कर सकता। और ये पाप खत्म होने के बाद जब दोनों बाहु को घर्षण किया गया, उसमें उसमें निकले। इसलिए बताते हैं भक्त बनने इतना आसान नहीं है, और भक्त का जब पाप खत्म होता है तो भक्ति में आता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं जैसाम तंतगत पापम जनना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। और उस साधु का लक्षण होता है श्रीमद् भागवत में क्या क्या लक्षण है, तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्पदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। ये साधु का भूषण है। और भगवद गीता में भी आता है जो दैवी असुर विभाग योग है उसका पहले श्लोक, तीन श्लोक का अंदर साधु का लक्षण बता गया। निर्भेद आत्मशुद्धि आध्यात्म का ज्ञान का अनुशीलन दान आत्मसंजम यज्ञपरायण वेदाध्ययन तपस्या सरलता अहिंसा सत्यता क्रोध विहीन त्याग शांति लोभहीनता भद्रता लज्जा संकल्प तेज क्षमा और धैर्य पवित्रता ईर्ष्या रहित और सबको सम्मान देना, ये सारा दिव्य गुण किसके अंदर आता है, साधु का अंदर। लेकिन दुष्ट के अंदर कौन सा गुण आता है, इसका चौथा नंबर श्लोक गीता का चौथा नंबर श्लोक 16 चैप्टर 4 नंबर श्लोक में आता है, दम्भ दर्प अभिमान स्व क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरम। यह असुर स्वभाव का व्यक्ति जो होता है उसका अंदर ये गुण सब आता है, दम्भ दर्प। इसलिए उड़िया भाषा में एक ही कथा आता है, जब दुष्ट लोग गर्भ दम्भ कर लेता है उसका अंदर तो घमंड आ जाता है, तब कहते हैं गर्भ गंजन नर हरि गर्भ नरखंति कहारी। समझ में आ रहा है नहीं आया? जो गर्भ करता है अपना को दम्भ करता है घमंड करता है, तब उसका जो गर्भ को कौन खंडन करता है, नरहरि। गर्भ गंजन नरहरि इसको खंडन करता है कौन, स्वयं प्रभु। इसलिए तो नरहरि मतलब स्वयं नृसिंहदेव प्रकट हुए, क्योंकि हिरण्यकशिपु के अंदर इतना घमंड था, वही घमंड को नष्ट करने के लिए स्वयं प्रभु विराजमान। इसलिए बोलते हैं नरहरि गर्भ नरखंति कहारे, उसका जो गर्भ कोई नहीं रक्षा कर सकता है, ना ब्रह्मा जी ना शिव जी ना दुर्गा ना काली ने कितना देवी लोग कितना कुछ भी हो जाए कोई नहीं रक्षा कर सकता है। और असुर लोग का अंदर वही गर्भ है, घमंड है, दम्भ है। ये छह गर्भ दम्भ अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञान, ये सारा असुर स्वभाव व्यक्ति के अंदर प्रकाश पाता है, और बैन के अंदर सारा गुण ही गुण यही था। किसी भी जगह पे ये दुष्ट लोग को मारने के लिए स्वयं प्रभु आना पड़ता है, और किसी भी जगह पे भक्त का हाथ में मर जाता है, किसी भी जगह पे यहाँ पे जैसा वर्णन है ये मुनि ऋषि बैन को कोई अस्त्र शस्त्र उठाकर नहीं मारे, कोई हाथ लगाकर नहीं मारे, किससे मारा दिए, मंत्र से। आप सोच लीजिए ये कौन सा युग का बात होगा। जिस प्रकार शास्त्र बताता है त्रेता युग में यज्ञ करने के लिए ऐसा ब्राह्मण होते थे जो कि मंत्र से आग उगाते थे। त्रेता युग में ऐसा ब्राह्मण थे, मंत्र के से कितना मतलब पावर है, मंत्र का पावर से एक व्यक्ति को मार दे। और मनुष्य इसी प्रकार शुद्धता, लेकिन अभी का समय में इसलिए भागवत में ऑलरेडी वर्णन है कलो शूद्र संभव, कलो युग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, चंडाल है, और उसका मंत्र क्या काम करेगा। लोग बोलते हैं हमें साफ दे दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वो युग का अनुसार था और युग में ऐसा ही। इसमें बहुत सारा चर्चा भी हो सकता है, लेकिन आप लोग को थोड़ी सी और एक चीज बताना मैं थोड़ा लेकर लाया था, वो चीज बहुत सबके लिए लाभदायक है। इसको आप जानना चाहते हैं तब आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है संतान। क्या चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है संतान, और निसंतान व्यक्ति के शास्त्र में वर्णन किया गया है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं मानना चाहिए, आपको पहले से बताया था, भक्त ऐसा नहीं मानना चाहिए निसंतान है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन शास्त्र का अनुसार जो कहा गया है निसंतान व्यक्ति का मुख नहीं देखना, लेकिन भक्त के लिए नहीं, आपको बता दे रहा हूं पहले से। और हर व्यक्ति चाहता है संतान, लेकिन संतान कैसा होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, अभक्त होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और क्यों भक्त नहीं हो पाता है, क्यों अभक्त होता है, ये प्रमाण भी है। ये संहिता है कि चरक संहिता है, उसमें कुछ वर्णन किया गया था, उससे मैं थोड़ा सा नोट किया। ये तो पहले समय पे 10 विध संस्कार होता था, 10 विध संस्कार होता था। अभी कोई संस्कार है? हाँ जी, जिसी प्रकार पहले शादीशुदा कैसा होता था, घर वाले देखने के लिए जाते थे, होगी नहीं, अभी फेसबुक में देख लिया है कि नहीं। अभी क्या समय आप देखिए, क्योंकि वो टाइम का बात अभी का बात है, इसलिए भागवत से सारा चीज मिलता है। वो टाइम पे क्या था, अभी क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए तो इसलिए प्रभुपाद बोले पहले युग में जो ब्राह्मण थे अभी नहीं है, अभी मैंने सबको ब्राह्मण बनाना है, आई एम क्रिएटिंग द ब्राह्मण, ब्राह्मण मैं सृष्टि करूंगा। तब और हर व्यक्ति संतान चाहता है, ज्यादा से ज्यादा लोग पुत्री नहीं चाहते, क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 99% लोग क्या चाहते हैं, पुत्र। लेकिन नाम है पुत्र, पुत्र नाम जो पड़ता है वो पुत्र का डेफिनेशन आता है, जो पुत्र नाम का नरक से उधार करता है उसका नाम पुत्र, नहीं तो मूत्र। और हर व्यक्ति चाहता है पुत्र, और कैसा होना चाहिए, पहल संस्कार गर्भधान संस्कार। यदि पुत्र की इच्छा करनी है तो पत्नी को ऋतुकाल की जो पुत्र चाहता है उसको जुड़वा दिन में स्वामी का छत्र मिलना चाहिए, ये वर्णन है। जो पुत्र चाहता है और जो पुत्री चाहता है कौन सा दिन मिलना चाहिए, अनजोड़, अनजोड़ दिन, मतलब जिसी प्रकार जुड़वा दिन हो गया 4, 6, 8, 10, और अनजोड़ दिन कैसा है 5, 7, 9, इसका अंदर अनजोड़ दिन में मिलता है तब लड़की, और जोड़े वाला दिन में मिलता है तब भी क्या होता है, लड़का मतलब पुत्र। यदि कोई पुत्री का इच्छा करता है तो उसका अनजोड़ या अनजोड़ दिन में रात को पत्नी का पति का साथ मिलना चाहिए, और उसके लिए भी कुछ मुहूर्त भी होता है।
रात्रि के शुभ समय में से भी प्रथम 15 अंतिम 15 मिनट का त्याग करके बीच का समय गर्भधान के लिए निश्चिंत किया जाता है। और गर्भधान का जो समय होता है 7 दिन का टाइम दिया गया है, उस 7 दिन के अंदर कौन से टाइम पे मिलना चाहिए, कौन से टाइम पे मिलना चाहिए। संडे का दिन होता है, उस टाइम होता है 9:30 बजे से 3 बजे का अंदर। मंडे होता है 1:30 बजे से 3 बजे का अंदर। मंगलवार होता है 10:30 से 1:30 बजे तक। वेनेसडे होता है 3 बजे के 4 बजे का टाइम पे। गुरुवार होता है 12 से 1:30। शुक्रवार होता है तो 12 से 3। और सैटरडे होता है तो 9 से 12 का अंदर। ये मेंशन किया गया है वो टाइम के अंदर मिलना चाहिए। रात के समय कम से कम 3 दिन पूर्व निश्चिंत कर लेना चाहिए। निश्चिंत रात्रि में संध्या होने से पूर्व पति और पत्नी को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सद्गुरु और अपना इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। गर्भधान एक प्रकार यज्ञ है, इसलिए इस समय सतत यज्ञ की भावना रखनी चाहिए। विलास की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। दंपति अपने चित्त वृत्तियों को परमात्मा में स्थिर रख करके उत्तम आत्मा का आवाहन करते हुए प्रार्थना करें। हे ब्रह्मांड में विचरण कर रही सूक्ष्म रूप धारण पवित्र आत्माओं, हम दोनों आपका प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे घर जीवन और वेश को पवित्र तथा उन्नत करने के लिए आप हमारे यहाँ जन्म धारण करके हमें कृतार्थ करें। हम दोनों अपने शरीर मन प्राण और बुद्धि को आपके योग्य बनाएंगे, आपके योग्य बनाएंगे। पुरुष ये कह रहे हैं पहले अपना इष्टदेव अपना गुरु को पूजा करके फिर अपना मन और प्राण को लगा के आत्मा को आह्वान करना चाहिए, आत्मा को आह्वान करना चाहिए। ऐसा मेरा को संतान हो जाए जो कि हमारा देश हमारा वेश हमारा मनोवृत्ति हमारा चित्त परिवर्तन हो जाए, प्रभु का सेवा में लग जाए, ये कहा जाता है। फिर एक ही श्लोक उच्चारण करना पड़ता है, जिस प्रकार प्रार्थना करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रभु का प्रणाम करने के टाइम पे प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार स्वामी स्त्री का मिलने का टाइम पे ये श्लोक उच्चारण करना चाहिए। और उच्चारण करने का पहले किस प्रकार पति बेड का ऊपर जाना चाहिए और पत्नी किस प्रकार बेड का ऊपर जाना चाहिए वो भी वर्णन है। पुरुष दाएं पैर से स्त्री से पहले सज्जा पर आरोहण करें और स्त्री बाएं पैर से पति के दक्षिण पार्श्व में सज्जा पे चढ़ें। तत्पश्चात सज्जा पर निम्नलिखित मंत्र को पढ़ना चाहिए। अहोरसि आयुरसि सर्वत प्रतिष्ठासि धाता, त्वं दधातु विधाता त्वं दधातु ब्रह्मचर्यस्य भवति। ब्रह्मा बृहस्पति विष्णु सोम सूर्य तथा आशिनौ भोग अथ मित्र करुण वीरम ददतु मे सुतम। हे गर्भ तुम सूर्य के समान हो, तुम मेरी आयु हो, तुम सब प्रकार से मेरी प्रतिष्ठा हो। धाता तुम्हारी रक्षा करें, विधाता तुम्हारी रक्षा करें, तुम ब्रह्म तेज से युक्त हो। ब्रह्मा और बृहस्पति विष्णु सोम सूर्य अश्विनी कुमार और मित्र वरुण जो कि जो दिव्य शक्ति रूप से मुझे वीर पुत्र प्रदान करें, ये चरक संहिता का 8 और 8 नंबर श्लोक में वर्णन है। इस प्रकार ये श्लोक को प्रार्थना करते हुए स्वामी स्त्री के साथ मिलना चाहिए, तब संतान कैसा निकलेगा, 1 नंबर। लेकिन अभी का युग में कोई किसी भी जगह इसलिए बोलते हैं मनुष्य ही कामी, मनुष्य ही लोभी, मनुष्य ही स्वार्थी, पुरुष जोनि में है नहीं, पशु जोनि में है नहीं। कितना एग्जाम्पल दे, कितना एग्जाम्पल वर्णन है। लोभी का कारण इसलिए प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि चावल का बुरा रास्ता में डाल दीजिए, गाय आएगा खाएगा, खाने के बाद भाग जाएगा, को आएगा खाएगा वो भी भाग जाएगा, आदमी आएगा तो सारा उठा कर ले लेगा, ये लोभ का कारण। और मनुष्य ही लोभी। और कामी पशु का कुछ समय होता है, गाय देखिए, कुत्ता देखिए, बिल्ली देखिए, कोई भी पशु अपना टाइम, मनुष्य का नो टाइम टेबल, ना तिथि बार कुछ। कामी और स्वार्थी, जब तक स्वार्थ है तब तक मित्रता है ना, लेकिन पशु में कोई स्वार्थी नहीं है। आप देखो हर पशु दूसरा पशु को भी क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है। बंदर कुत्ता का साथ आप खेलते होगा, देखा होगा, लेकिन मनुष्य स्वार्थी है। इसलिए तीन दरवाजा है नरक जाने के लिए, काम क्रोध लोभ जो होता है, ये तीन दरवाजा है नरक जाने के लिए। लेकिन कृष्ण लोक में जाने के लिए एक ही दरवाजा है, वो दरवाजा नाम निस्वार्थ पर सेवा, कृष्ण का दरवाजा का नाम। बोले वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, निस्वार्थ पर सेवा प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का श्लोक से हमको क्या शिक्षा मिल रहा है, बेन ने जो किया है वो नहीं करना, जो नहीं किया है उसको अपना जीवन में उतारना है, और भक्त का संग में रह के भक्ति करके और भगवान को प्राप्त करना। इसलिए पिछले श्लोक में महाराज काल मेंशन किए थे, और श्लोक में तो चलो प्रभुपाद ने मेंशन किया है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम है केवल कड़ो नास्ते 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 गति अन्यथा, कड़े जग में एक ही मंत्र और इस्कन में एक ही मेडिसिन, किसी को कुछ भी बीमार हो जाए एक ही मेडिसिन, क्या मेडिसिन है, हरि नाम। हमारा दूसरा मेडिसिन नहीं है। अब मेडिसिन स्टोर में जाएंगे शरीर के लिए हजार मेडिसिन है, लेकिन आत्मा कल्याण अर्थ है, आत्मा को सदगति अर्थ है, एक ही मेडिसिन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये मेडिसिन लेकर आए, एनएची औषधि माया नाशी बारे लागी, हरे कृष्ण महामंत्र लो तुम्हें मागी। प्रभु ने स्वयं ये मंत्र लेकर आए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, शिशि वृंदावन धाम की, शिशि गौरनिताय की, कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। कहने का समय पे कुछ त्रुटि होगा तब आप लोग वैष्णव रीति में, वैष्णव समाज में जैसा अपराध को क्षमा करने के लिए कर दीजिएगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।